अल्लाह ताला ने लोगों की गिरोहबंदी का तذکرہ किया कि हर बंदा अपने ही काम पे खुश है। कुल्लु हिस्बिन बिमा लदैहिम फरेखून, जो उसके पास है, जो तरीका उसके पास है, उसी पे खुश है। इससे भी पता चलता है कि बिमा लदैहिम वो होने की बजाय कि बिमा अनज़लल्लाहु, बिमा लदैहिम पे जब लोग खुश हो जाते हैं तो उनके अंदर फिरकेबाजी शुरू हो जाती है, इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं, इत्तेहाद और इत्तफाक नहीं रहता। ये कभी होगा जब बंदा बिमा लदई हिम से ऊपर उठकर बिमा अनज़लल्लाह पर आएगा। अब आम हालात में तो लोग अल्लाह ताला से दूर रहते हैं, यहाँ ख़ास तौर पे शिर्क की तरफ भी इशारा है कि मक्का वालों का जो शिर्क था उसकी वजह भी असल में आबा परस्ती थी, शख्सियतें थीं, नाम प्यारे थे, ख़ानदान के तौर तरीके ये सब कुछ ही प्यारा था। लेकिन होता क्या है कि आम हालात में तो इंसान उन चीज़ों पे जमा ही रहता है, लेकिन जब किसी अनयूजुअल कंडीशन का शिकार होता है, कोई मुश्किल हालत उसके ऊपर आती है, उस वक़्त फिर फितरत पे चढ़े हुए वो पर्दे खुलने लगते हैं। इसी का तذکرہ अब अगली आयत में आता है, फरमाया व इज़ा मस्सन नास दुर्रुन दअऊ रब्बहुम मुनीबीन मुनीबीन इलैहि थुम्मा इज़ा अज़ाकहुम मिन्हु रहमा रहमतन इज़ा फ़रीक़ुम मिन्हुम बिरब्बिहिम युशरिकून। और जब पहुंचती है लोगों को कोई तकलीफ तो पुकारने लगते हैं अपने रब को रजू करते हुए इसी की तरफ, फिर जब इनकी फरियाद को कबूल फरमाकर चखाता है उनको रहमत अपनी तरफ से, तो यकायक एक गिरोह इनमें से अपने रब के साथ शिर्क करने लगता है। और ये शिर्क क्यों है? लियकफुरू बिमा आतैनाहुम, अच्छा न शुक्री कर लें इस नेमत की जो हमने इनको दी। कोई बात नहीं, फतमत्ताउ, पस ना शुक्रो लुत्फ उठा लो, फसौफ तालमून, तुम्हें इसका अंजाम मालूम हो जाएगा। इस आयत में वही बात है जिसका तذکرہ पीछे भी कई बार हुआ कि जब इंसान किसी मुश्किल में आता है तो उसको दुनिया के लोगों की सारी तसल्लियाँ और दिलासे भूल जाते हैं, क्योंकि कोई बंदा उस वक्त उसके काम नहीं आ सकता या कोई उस वक्त अवेलेबल नहीं होता, कोई ऐसा होता है कि जो उस वक्त उसकी मदद करने के काबिल ही नहीं होता। उस वक्त उसको पता चलता है कि हमें अपने रब के साथ ही ताल्लुक़ जोड़ना है, और ऐसे वक्तों में फिर वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पुकारते हैं। मुनीबीन वही लफ्ज़ है जो पीछे भी गुजरा, नौब से, यानी सबसे कट कर उस वक़्त रब याद आता है। और हर इंसान की ज़िंदगी में कम से कम एक बार ये मौका ज़रूर आता है कि सारे ज़ाहरी सहारे टूटते हैं, गिरते हैं, और फिर उसको अल्लाह की कुदरत समझ आती है। बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला इस तरह से मदद कर देता है कि इंसान शुक्र की वजह से अल्लाह को पा लेता है। बाज़ दफ़ा सारे असबाब इख्तियार करने के बावजूद भी जब खैर नहीं मिलती तो इस एहसास से टूट जाता है कि वाकई फिर इंसान जो मर्जी कर ले जब तक अल्लाह ना चाहे काम नहीं होता। तो आप कह सकते हैं कि दो तरीक़ों से अल्लाह ताला बंदों को अपनी तरफ लाता है, एक किसी बहुत बड़े दुख में डालकर, जब सारे असबाब सारी कोशिशें होने के बावजूद इंसान तकदीर में आने वाले सदमे से ख़ुद को ना बचा सके, और दूसरा बहुत बड़ी खुशी देकर, कोई अनयूजल नेमत देकर, उस वक्त भी इंसान जो है वाकई अल्लाह को पहचानता है। ये गलत बात है अगर कोई ये कहे कि खुशियों में हमेशा इंसान बहक जाता है। मुझे तो ऐसे लगता है कि खुशियों में अल्लाह की तरफ आना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि गम जब आता है ना तो साथ ही डिप्रेशन आता है, साथ ही इंसान अपने ऊपर एक बोझ महसूस करता है। जबकि जब इंसान के ऊपर कोई खुशी आती है ना तो वो इतना झूमता है, इतना खुश होता है कि दिल की गहराई से बाज़ दफ़ा ये तक कह देता है कि अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूँ। उस हदीस की रोशनी में कि जिस शख्स को उसका ऊँट वापस मिलता है तो खुशी से कुफ्र वाला कलमा उसकी ज़ुबान से निकलता है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला को उस पर प्यार आता है। फिर से एक और बात पता चलती है, और वो क्या है कि इज़ा अज़ाकहुम मिन्हु रहमतन इज़ा फरीकुम मिन्हुम, सारे नहीं फरीकुम मिन्हुम, यानी जब अल्लाह रहमत देता है तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने रब के साथ नाशुक्री करते हैं। इससे क्या पता चलता है कि जब तकलीफ़ आती है ना तो सारे ही रब की तरफ झुकते हैं, क्योंकि आप देखिए कि ये नहीं कहा गया कि फरीकुम मिन्हुम दुर्रुदाउ रब्बहुम मुनीबीन, दुख में सारे ही पुकारते हैं लेकिन सुख में कुछ लोग जो हैं वो रब के साथ नाशुक्री करते हैं। फिर अगली बात है कि कैसे रब के साथ शरीक करते हैं। नंबर एक, उस नेमत को किसी इंसान के नाम मंसूब कर देंगे, ये फलां बुजुर्ग ने बेटा दिया, नऊज़ बिल्ला, फलां कब्र से मिला, फलां से मिला। इसी तरह एक और नाशुक्री क्या होती है कि उस नेमत को फिर अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल करने लगते हैं, नेमत देने वाले को भूल जाते हैं उस खुशी को पाकर। और ख़ास तौर पे कुफार मक्का की जो आदत थी कि जब कहत साली का दौर दौरा होता तो उनकी उम्मीदें अपने माबूदों से पे टूट जाती, चारों तरफ से गम होता, हर तरफ से पलट के एक तरफ आने लगते और वो अल्लाह की ज़ात थी। अल्लाह ताला जब उनके काम कर देता तो वापस शिर करने लगते, फिर उनकी पूजा पाठ में मशगूल हो जाते। अल्लाह ताला कहते हैं ये क्यों है, ली यकफुरु, ये जो लाम है ना अमर का है, हुक्म का है, ताकि वो कुफ्र करें, ना शुक्री करें। और धमकी का मानी दे रहा है यहाँ, यानी ली यकफुरु में लाम है अमर का लेकिन तहदीद और धमकी का मानी दे रहा है, यानी बेशक वो कुफर की रविश इख्तियार कर लें, जितनी मर्जी करें, शौक से करें। बीमा तई ना हम, दिया तो हमने। अल्लाह ताला का हौसला बहुत है, हमारी तरह ये नहीं है कि किसी को गलत काम करता देखें कि अच्छा जी काम मैंने किया, नाम किसी और के लगा रहे हैं, नजरें न्याजें किसी और की, फलां के तुफैल से ये मुसीबत टली, ये फलां के आस्ताने के सदक़े में मिली, ये कहने लगे। नहीं, अल्लाह ताला कहते शौक से करो, ली यकफुरु और खोल के करो और ना शुक्र बन जाओ। बीमा तई ना हम, लफ्स आ तई ना हम को भी देख लें, हमने उनको दिया, हमने चूँकि इनको दिया था फिर भी इन्होंने दूसरों के नाम ये चीज़ लगा दी। 4 दिन की ज़िंदगी है, कर लें, फतमत्ताओ, खूब मज़े उठाओ, ऐश करो, मज़ा करो। फसौफ तालमून, अन करीब तुमको पता चल जाएगा कि तुमने क्या खोया और क्या पाया इस तरह से काम करते हो। यहाँ आप देखिएगा कि पीछे से बात शुरू हुई थी इज़ा फरीको मसन नास, बीच में बात आती गई लेकिन आखिर में तालमुन कह दिया, तुम जान लोगे, एकदम गायब के सीगों से उठकर हाजिर के सीगों में ला दिया। ये भी अरबी जुबान का एक अंदाज होता है, जैसे आप बच्चे को कुछ कहते कहते एकदम उसको ही कहते हैं अच्छा फिट लग जाएगा तुमको पता। तो ये चीज़ भी इस बात में शिद्दत की है कि लोग ऐसी चीज़ों को बिल्कुल अपने हाल पर लेके रहें। फिर फरमाया अमन ज़ल्न अलैहिम सुल्तानन, क्या हमने उतारी है इन पर कोई दलील, किस बात की कि ये शिर्क करें, ये फलां कब्र वाले की तरफ इस चीज़ को मंसूब करें, कुछ इस किस्म का काम करें, क्या हमने कोई ऐसी दलील दी है इस बात की। फहुवा यतकल्लमु, बस वो गवाही देती है इस शिर्क की सच्चाई पर, बीमा कानु युश्रिकून, जो वो शिर्क करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं क्या कोई ऐसी दलील है इनके इस अमल की कि अब ये नेमत मिलने पर तुम दोबारा शिर्क करो। यहाँ आप देखिए कि पिछली आयत में खिताब भी हो रहा था फसौफ़ तालमून, तुम जान लोगे, लेकिन अब गायब की तरफ बात हो रही है, युश्रिकून। आप इन चीज़ों पे ना गौर किया करें, चूँकि थोड़ा बहुत अब फेल को समझने लग गया ना, पहले तालमून था, अब इसके साथ यकीनन तुश्रिकून होना चाहिए था, तुम जान लोगे, तुम शिर्क करते हो, लेकिन तालमून तो कह दिया, लेकिन यहाँ बीमा युश्रिकून के कैसे लग रहा है कि पहले तो अल्लाह ताला ने उनसे बात करनी चाही हाजिर के सीगों में, लेकिन अब इशारा ही कर दिया कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे तखातुब किया जाए। फिर सुल्तान से यहाँ क्या मुराद है, दलील, रसूल की तालीमात, कोई पैगंबर की बातें, कोई कुरान की बात, यानी कोई ऐसी चीज़ तुम्हें मिलती है, कोई अकली या नकली रिवायत ला के दिखा दो कि जिसकी बुनियाद पे तुम ये शिर कर रहे हो कि ये नेमत मिल गई, ये बच्चा मिल गया, अब इसको इतने साल रिस्क नहीं खिलाना और फलां कब्र से जाके लेना है, दिस एंड दैट, क्या तुम्हें कोई ऐसी चीज़ मिलती है। मुराद है कि नहीं मिलता, यहाँ फिर देखिए सवाल है लेकिन मुराद इसमें इनकार है। वह इज़ा अज़क़ना नासा रहमतन फ़रिहू बिहा, और जब हम लोगों को रहमत चखा देते हैं तो फूले नहीं समाते। वह इसा तुसिबहुम सैय्यतुम बिमा क़द्दमत अय्दीहिम, और अगर इनको पहुँचती है कोई तकलीफ़ बवजह इनके करतूतों के जो इन्होंने आगे भेजे हैं, इज़ा हुम यक़नतून, तो वो मायूस हो जाते। बिल्कुल वही बात और ज़्यादा आगे खोल के बयान कर दी कि मोमिन के बरक्स काफिर का रवैया क्या होता है, कि जब उसको कोई रहमत मिलती है खुशियाँ मनाते हैं, मुश्किल आती है मायूस होते हैं। यहाँ जो शुरू में फ़रह हुआ है ना, तो ये बुरे मानों में आया, वैसे तो फ़रह फ़रहत का लफ्ज़ अच्छे मानों में आता है, लेकिन फूलने के मानों में भी आता है, चौड़ा होना, शोए मारना, दिखावा करना, शो ऑफ करना। अल्लाह ताला कहते हैं ज़रा नेमत मिल जाए तो कहते हैं हाँ जी बस हम तो मुस्तक थे, हमने तो इतना पढ़ा, हमने तो ये किया, हम तो जद्दी पुश्ती अमीर होते हैं, हमारा तो ख़ानदान ही ऐसा है। लेकिन ज़रा कभी मुश्किल आ जाए, कोई तकलीफ़ आ जाए, और तकलीफ़ का आप देखिए कि सिला किधर गया, बिमा कद्दमत अईदीहिम। या फिर नोट कीजिएगा अंदाज को, अब गौर करें आप ज़्यादा, कि अज़क नन नासा, हम चखाते हैं लोगों को रहमत। तो ये भी कहा जा सकता था ना कि जब इज़क नन नासा सैयतुन, ये नहीं कहा। हालांकि खैर और शर दोनों अल्लाह की तरफ से आते हैं, हमारे ईमान का ये हिस्सा है। जब हम कलमा पढ़ते हैं ना तो उसमें जहाँ बाकी इकरार करते हैं ना, वहाँ ये भी कहते हैं कि वबिल कद्री खैरी ही व शर्री ही मिन अल्लाह, मेरी तकदीर का खैर जो मुझे पहुँचता है या शर जो पहुँचता है ये अल्लाह की तरफ से है, दोनों चीज़ें अल्लाह की तरफ से हैं। इसके बावजूद अल्लाह ताला का असूल क्या है, कुलिया कानून क्या है, कि जब खैर आए इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ है, क्योंकि हमारा कोई काम इस काबिल है ही नहीं कि वो खैर पहुँचे। मिली है तो वो अल्लाह के रहम और करम पे मिलती है। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो उसकी सज़ा में पकड़ हमारी होती है, अल्लाह की रहमत है, और गुनाह हमारी बदअमलियों की सज़ा है। इज़ा हुम यक़नतून, तो मायूस हो जाते हैं, बिल्कुल समझ ही नहीं आती उनको, हो क्या गया, डिप्रेशन में चले गए, एक नेमत क्या गई, सारी नेमतें उनकी आंखों से हल्की हो गई, ऐसे लगता है कि जैसे शायद कभी इनको कोई नेमत मिली नहीं थी। आज भी देखिए, खुदा ना खास्ता किसी एक बच्चे का इंतकाल हो जाए तो बाज़ औरतें इतनी दुखी फिरती हैं कि बाकी जो चार बच्चे होते हैं उनकी भी कोई परवाह नहीं करती। कोई एक रिश्ता चला गया, बाकी जो रिश्ते मौजूद हैं उनका हक ही नहीं अदा कर पाते, तो ये दुरुस्त रवैया नहीं। यानी आप अपने ईमान का अगर मुहासबा करना चाहें ना, आप अपने आप को देखना चाहें कि कुरान पढ़ने के साथ अब मेरे अंदर ईमान आया कि नहीं आया, तो ये इसका एक पैरामीटर है क्या, कि आप आपे से बाहर नहीं होंगी। यानी आप अपने आप से पूछ सकती हैं क्या मैं आपे से बाहर तो नहीं होती, बहुत बड़ी खुशी पाकर या बहुत गम की खबर सुनकर। बस ये दो रवैये मोमिन की ज़िंदगी से बिल्कुल निकल जाते हैं, दुनिया का होना या दुनिया का ना होना, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं डालता उसको। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल वाऊज़ु बिका मिन हाली अहली नार, हर हाल पे अल्लाह तेरा शुक्र है, लेकिन एक हाल से तेरी पनाह मांगती हूँ, और वह अज़ाब नार जहन्नमियों का हाल मेरा ना बने। अल्हम्दुलिल्लाहि बि नेमत ही ततिम्मुस सालिहात, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसकी वजह से नेमतें पूरी होती हैं। ये खुशी पे पढ़ते थे और पहली दुआ अल्लाह के नबी गम के वक्त पढ़ते थे। आप देखेंगे ठहराव आ जाता है, आपको अपने कदम ज़मीन पे लगते दिखेंगे। दुनिया में देखा गया जब कोई दुख में आता है लोग उसको साइकाट्रिस्ट पे ले जाते हैं, उसको मूवीज़ दिखाते हैं, उसको खुली जगहों में लेंगे, सैर कराएंगे, वो इफ़ेक्ट कभी नहीं आता। क्योंकि दिल दुखी हो आप नियाग्रा फॉल देखने चले जाएं, आपको लगेगा वो भी आसमान ही रो रहा है, वो भी आपको आंसू ही लगेंगे। एक चीज़ बंदे को मुतमईन करती है, और वो ये एहसास कि जो दिया वो अल्लाह ने दिया मकसद के लिए, जो लिया अल्लाह ने लिया मकसद के लिए। मोमिन जाहिर को नहीं देखता, इसके पीछे देखता है। बस आप देखिए ना कि कोई भी मशीन काम करती है, हम कंप्यूटर्स खोलते हैं, हमें इसकी स्क्रीन दिख रही है ना, डेस्कटॉप दिख रहा है, उसमें कहीं कलर्स हैं, कहीं लिखा हुआ है, कहीं कुछ है, कहीं आवाज़ चल रही है, ये एक जाहिर को देखना है। लेकिन एक टेक्नीशियन जब कंप्यूटर को देखता है तो वो फौरन उसके पीछे सोचता है, स्क्रीन का रंग ऐसा क्यों आ रहा है, इसका मतलब कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अच्छा ये खुलने में इतना टाइम लगाता है, इसका मतलब इसकी स्पीड स्लो है, अच्छा नेट ऐसा है। वो हमेशा उसके इनसाइट पे चला जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर अंदर की सेटिंग्स चेंज कर दी जाएंगी ना तो बाहर की स्क्रीन ठीक हो जाएगी। बंदे मोमिन को अल्लाह ये निगाह देता है कि वो अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाले मुख्तलिफ हालात वाक़यात की असल चीज़ ठीक करने की कोशिश करता है। आप कंप्यूटर की मिसाल ले रहे हैं, हमने देखा कि डेस्कटॉप के ऊपर कलर डिफरेंट आ रहे हैं, हम कभी उसको सीधा रखेंगे, कभी थोड़ा पीछे मूव करेंगे, एक डिफरेंट एंगल से देखेंगे, कभी करीब आके देखेंगे, और एक टेक्नीशियन क्या करेगा, फौरन उसको अंदर जाके कहीं से भी उसका जो बटन लिखा होगा उसको खोलेगा और उससे स्क्रीन का रेजोल्यूशन बढ़ा लेगा, कम कर लेगा, कलर को डार्क कर लेगा, लाइट करेगा, और अगर उसमें कोई नक्स पैदा हो रहा है तो उसको खोल के अंदर से पुर्जा बदल देगा। अब अपनी ज़िंदगी में ये आदत डाल लीजिए। यकीन करें, आप लोगों से उलझना छोड़ देंगे, शिकवे ख़त्म, नाराज़गियाँ ख़त्म। मेरे साथ क्यों हुआ फुला, मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, मेरी माँ ऐसी क्यों, मेरा शौहर ऐसा क्यों, मेरा बाप ऐसा क्यों, मेरी बहू ऐसी क्यों, मेरी बेटी ऐसी क्यों। आपको ये सब चीज़ें छोटे छोटे मोहरे लगेंगे, जैसे मोहरे होते हैं ना, लोग शतरंज खेलते हैं तो वो एक मोहरा उठा के इधर रखते हैं, एक उधर रखते हैं, हाथ तो पीछे आपके होते हैं, मोहरे उनके पड़े में। इसी तरह हम सब छोटे छोटे मोहरे हैं, असल बुनियाद पीछे ठीक हो जाए बाकी काम ठीक होंगे, अदरवाइज वही है जिसका अल्लाह ताला ने यहाँ तذکرہ फरमा दिया। अल्लाह ताला ऐसे ना शुक्रे और ना कदरे लोगों को बताते हैं कि देखो तुम्हें समझ नहीं आती। और यहाँ वो हदीस भी मुझे याद आ रही है कि जो मुनाफिक के बारे में आती है कि मुनाफिक की मिसाल गधे की है, उसको नहीं पता कि मेरे ऊपर जो बोझ मेरे मालिक ने लादा है वो मुझसे खुश होकर लादा है या मुझसे नाराज़ होकर लादा है। इसके बरक्स मोमिन तो हर वक्त शुक्रगुजार होता है, उसके दिल में ईमान की शम्मा रोशन रहती है, वो हर मौके पे पुर उम्मीद रहता है। डिप्रेशन का नाम बंदा है मोमिन की ज़िंदगी में नहीं आता। माथे पे तेवरी होना आपके ईमान के खलल की अलामत है, तफक्कुरात का होना, गहरी सोचों में खोए खोए रहना, ये सारी चीज़ें ईमान के मुनाफी हैं। मोमिन को तो बस एक ही चीज़ जेबा देती है, स्माइल, मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, खेला हुआ, कोई डेफिशिएंसी नहीं उसकी ज़िंदगी में। वो अंदर से दुखी है कि खुश है उसको ही पता होता है, लोगों को नहीं पता होता। वो बीमार है, वो खुश है, वो रोज़े से, वो नहीं है, हर चीज़ उसकी और उसके रब की होती है। लोगों के बीच में वो एक बड़ा पुर इत्मीनान किस्म का शख्स होता है। इसके बरक्स अल्लाह अकबर, आप देखिए कि गधे की बुरी आदत है। कभी आप एनिमल बिहेवियर को चेक करें, गधे का जब पेट भर जाता है ना घास से, उसी घास डालने वाले को दुलत्तियाँ मारता है, टांगे मारता है, और जब भूखा होता है ना तो मालिक को देके हींगना शुरू हो जाता है, जैसे बुरी बुरी आवाज़ें निकालता है और बहुत ही ख़राब काम करता है। बिल्कुल मुनाफिक का ये हाल है, खुश होता है, इतना पेट भरा हुआ है कि नाच नाच के टांगे ही मार रहा है, उसको लगता है कि अब मुझे अल्लाह से कोई और काम ही नहीं है शायद। और नाराज़ होता है तो हर जगह गंदगी उगालता है, क्या करता फिरता है, ना शुक्रिया, शिकवे, अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब अल्लाह ताला कहते हैं इन सब को छोड़ो, आओ इस कायनात के अंदर अल्लाह ताला की आदात को देखो, क्या क्या उसने फैलाया हुआ है। अवलम यरऊ, क्या उन्होंने नहीं देखा, क्या बारहा इसका मुशाहिदा नहीं किया, क्या अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ा, कि अल्लाह ताला रिज़्क़ कुशादा करता है, लिमन यशाउ, जिसका वो चाहे, व यक़दिर, और तंग कर देता है। कर लो कोशिश, कर लो इरादे, पढ़ लो, जॉब्स कर लो, बिजनेस खोल लो, लग रहा था कि इसमें तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की है, कर लो, अल्लाह की मर्ज़ी है तो खुलेगा, अल्लाह की मर्ज़ी है तो यक़दिर, तंग हो जाएगा। इन फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन यूमिनून, बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। देखिए कि इस आयत का ये आखिरी जुमला बड़ा काबिले गौर है, किसी के लिए रिज़्क़ का कुशादा होना या उसका तंग होना, इसका मुशाहिदा हम हर रोज़ करते हैं। हर शख्स पर मुख्तलिफ किस्म के हालात भी वारिद होते हैं, कभी रुपये पैसे की रेल पहल होती है, कभी दो पैसे भी नहीं होते। अहले ईमान को हालात के इस रद्दो बदल में अल्लाह ताला की हिकमतों के कई जलवे नज़र आते हैं। मेरे पास क्यों नहीं है, इसका था कि मैंने कहीं एक्स्ट्रा खर्च कर दिए थे। मेरे पास आए क्यों है, इसका था कि मेरे पास किसी का हक है, अल्लाह ने मेरे साथ मुझे किसी और का भी दे दिया। ये चीज़ समझ है ना इंसान, तो ना तो वो बहुत अपने आप को परेशान करता है और ना आगे चला जाता है। इसीलिए फरमाया कि जब तुम्हारे पास ज़्यादा आए, जब तुम्हारा माल आ जाए तुम पे, तो क्या करो, सारा खुद ही खा पी लो, नहीं, फ़ाति ज़ल क़ुरबा हक का हो, और दे दो रिश्तेदारों को उसका हक, वल मिस्कीन वबन सबील, और मिस्कीन और मुसाफिरों को भी दे दो, क्योंकि ज़ालिका खैरुल लिल्लज़ीन युरीदून वजहल्लाह, ये बेहतर है इन लोगों के लिए जो अल्लाह की रज़ा के तलबगार हैं, अल्लाह का चेहरा चाहते हैं। वौलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग जो दोनों जहानों में कामयाब होंगे। बहुत ही खूबसूरत आयत है, अमर है ना, फ़ाती, एक लफ्ज़ होता है ऊतुल किताब, दिए गए किताब, तो ईता इस ज़कात, अब आती फेले अमर है, हुक्म दिया गया आप दीजिए, نبی بھی دیں اور دوسرے بھی دیں گے، کس کو؟ ذل قربہ، قرابت والے کو. کیا دیں؟ حق کا ہو. لفظ حق کا ہو پہ غور کریں تو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ غریب رشتہ داروں اور مسافروں اور محتاجوں کو جو کچھ تم دے رہے ہو کوئی احسان نہیں کر رہے، کوئی انعام نہیں دے رہے تم ان کو کہ تم ان پر احسان جتلاؤ پھر محفلوں میں ان کو رسوا کرتے پھرو، بلکہ یہ ان کا حق ہے، یہ تمہارے ذمہ واجب الادا ہیں. یہ تم سے بھیک نہیں مانگ رہے، اپنا حق لے رہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر غریب اور مفلس رشتہ دار کی ضروریات کو پورا کرنا اس کے امیر رشتہ داروں پر فرض ہے. مت سوچئے کہ ہمارے پیسے صرف ہمارے ہی گھر والوں کے لیے ہیں. مثلا ایک مرد اگر وہ کمائے تو وہ سوچے کہ میرے پیسوں میں صرف میرے چار بچوں اور بیوی کا حق ہے. نہیں، اس کی بہنیں، اس کے بھائی، اس کے غریب رشتہ داروں کا حق بنتا ہے. یہ دیکھیے کہ مال کی زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں، ذل قربہ حق کا ہو کی بات کر کے اس کو کامن کر دیا کہ لوگوں کا زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ ہوتا ہے. بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں زکوٰۃ کے مسئلے پوچھتے ہیں، فلاں کو دے دیں، اچھا اس پہ لگتی ہے، اس کو زیور بھی ہے، اس کے پاس یہ حق سے دے دو، مت تو ڈھائی میں سے، 97.5 میں سے دے دو، کیا بڑی بات ہے، اس کو دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے کہ صلہ رحمی کو فرض کر دیا. امام مجاہد کہتے ہیں کہ اس آدمی کا صدقہ قبول ہی نہیں ہوتا جس کا کوئی رشتہ دار محتاج ہو، یعنی رشتہ داروں کو چھوڑ کر دوسروں کو دے. مشکل سب سے زیادہ رشتہ داروں کو ہی دینا ہوتا ہے کیونکہ دل بڑا کھٹا ہوتا ہے، دکھ بڑا دیتے ہیں رشتہ دار، ہماری امیدیں توڑتے ہیں، ہمیں باتیں سناتے ہیں، کبھی ہم نے ان سے کچھ توقع رکھی ہوتی وہ کرتے نہیں. آپ کا سب سے پہلا فرض کیا بنتا ہے کہ آپ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بات کریں، اور اس طرح سے کرنا بھی کیا، اب ایک اور مسئلہ ہو جاتا ہے، اور وہ کیا کہ رشتہ داروں کو دیتے تو بہت ہے ماشاءاللہ، لیکن ہے کیا کہ جاتے ہیں تو ذرا خوب سلامی کرتے ہیں، وہ کھانے پکاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، کہا نہیں یریدون وجہ اللہ. یہ بہت بڑا بنیادی نقطہ ہے. آپ اور میں اللہ ہمیں دینے والوں میں کریں، اپنے سارے رشتہ داروں کو دے لیکن ایک ذات کو خوش کرنے کے لیے، اور وجہ اللہ. اگر آپ نے یا میں نے کسی اپنے رشتہ دار کو دے دیا یہ سوچ کر کہ ذرا میرا روب ہو، ٹور ہو جس کو اپنی زبان میں لوگ کہتے ہیں، ذرا پتہ چلے باہر رہتے ہیں، آتے ہیں تو خوب نوٹ نچھاور کر جاتے ہیں، اور پھر ذرا لوگ بعد میں دیکھنا کتنا یاد کریں گے، پھر جوڑے سی سی کے ہمیں بھیجیں گے اور دعوتیں کریں گے، اور سارے باقی رشتہ داروں کو برا کہیں گے، دیکھو فلاں بھی تو ہے نا پیسے والے، وہ نہیں دیتے، یہ فلاں کا دل بہت بڑا ہے. نہیں، سب ضائع ہو جائے گا. فلاح کب ملے گی؟ جب اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کی رضا کے لیے دینے والا دکھا دکھا کے نہیں دیتا، نوٹوں کی گڈیاں کھول کھول کے نہیں دیتا. دینے کا تو ایک بھی طریقہ ہے نا، مثلا آپ دیکھیے کہ ہم جب یہاں رہتے ہیں، ہمارے خاندان میں پیچھے کئی رشتہ دار غریب ہوں گے نا، کیا ضروری ہے کہ ہم یہاں سے یا جب جائیں تو ان کے ہاتھ میں دیں؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا ہم کسی ایک کو دے دیں؟ مثال ہے، آپ اپنی اماں کو دے دیں پیسے اور انہیں کہیں کہ آپ سب کو دے دیں، ایسی ضرورت عید آئی ہے دے دیں، اپنی طرف سے دے دیں، کچھ نہ کہیں، جھوٹ بھی نہ بولیں، سچ بھی نہ بولیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا میں ڈائریکٹ کسی کو جا کے دوں، اس کے ہاتھ میں دوں، ایک پروٹوکول سے دوں، تب اجر ملے گا؟ بلکہ آپ دیں اور پیچھے ہٹ جائیں، آپ کو لگتا ہے نا کہ دوسروں کا بھی دل کرتا ہے دینے کو. مثال ہے، آپ کی ایک اور بھی بہن ہے، یا آپ کی ماں کا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی اوروں کو دوں، اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں، آپ ان کو دے دیں اور انہیں کہ جس کو مرضی دے دیں، جائے غریبوں میں بانٹ دیں. یہ زکوٰۃ کی بات نہیں میں کر رہی، یہ صدقے کی بات ہے، یہ عام بات ہے دعوت. ہاں، آپ رشتہ داروں کو اس نیت سے دیں، صلہ رحمی ہے، محبت بڑھتی ہے، آپ کے خون کے رشتے ہیں، ان کے نظر میں ہے کہ آپ بہت کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتی ہیں، اس نیت سے آپ ان کو دیتے ہیں کہ چلیں اگر ان کی کوئی امید ہے وہ پوری ہو جائے، لیکن ہر لمحے چیک کریں کہ نیت تو نہیں بدل رہی. نیت بدل گئی تو سمجھے کہ فلاح کی بجائے خرابی ہوگی. اگلی آیت میں تھوڑا سا اس کا مفہوم اور بھی واضح ہوگا. فرمایا، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، اور جو روپیہ تم دیتے ہو سود پر کہ وہ بڑھتا رہے لوگوں کے مالوں میں، فلا یربو عند اللہ، تو سن لو کہ اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا. اور وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، اور جو زکات تم دیتے ہو رضائے الہی کے طلبگار بن کر، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، پس یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو کئی گنا زیادہ کر لیتے ہیں. इस आयत की दो मुख्तलिफ तरह से तफसीर की जाती है। अगर पिछली आयत जिसमें रिश्तेदारों को देने का हक और गरीबों मिसकीनों को देने की बात की जाए तो इस आयत से मुराद है वो माल खर्च करना जो किसी गरीब के ऊपर किया जाए ताकि वो आपकी ज़्यादा खिदमत करे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस आयत में रिबन से मुराद सूद या ब्याज नहीं है बल्कि वो हदिया और तोहफा है जो कोई गरीब आदमी किसी मालदार को या रियाया का कोई फर्द बादशाह या हुक्मरान को और एक खादिम अपने आका को या मखदूम को इस नीयत से दे कि वो इसके बदले में मुझे इससे ज़्यादा दे। इसलिए इसे रेबन कहा गया कि देते वक्त इसमें ज्यादती की नीयत होती है। अगरचे ये मुबाह है लेकिन अल्लाह के हाजिर नहीं मिलेगा क्योंकि फला यरबू इंदल्ला कि ये अल्लाह के नज़दीक नहीं बढ़ेगा। एक ये मतलब दिया गया, इसको सिंपल कर लीजिए कि किसी को तोहफा ये सोच के देना कि अब मुझे बढ़ा के देगा। कितना मारूफ कल्चर है हमारे यहाँ, शादियों में तो होता ही है, पहले दे ताकि फिर अगला कुछ तो बढ़ा के ही देगा। ईद आई है, कुछ लोग रिश्तेदार होते हैं वो जल्दी जल्दी जाके दे आते हैं रात को ही, क्योंकि अब कल ये हमारे बच्चों को देंगे तो चले उस पर कुछ 5-10 बढ़ा के ही देंगे। शादियों में क्या दिया था, पूरे दफ्तर खुलते हैं, पिछली 10 साल पुरानी कापियाँ ढूंढी जाती हैं, वो हमारी शादी में क्या दे गए थे अब हम भी इनको देने जा रहे हैं। फिर जब लोग दे के आते हैं तो पिछले पटारे खुलते हैं, मैंने फलां शादी में क्या दिया था। देखिए हर बंदे की हैसियत अलग है, आप खाती पीती हैं, आपकी बहन मुनासिब हालात की मालिक है, एक शादी आपकी बेटी की होती है, एक आपकी बहन की बेटी की होती है। आप अपनी बहन को देंगी अपनी हैसियत से, आपके पैसे आपकी हैसियत के हैं, आपकी बहन जब कल आपको देगी वो अपनी हैसियत देखेगी। हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा नासूर फैल गया, कई गरीब सफ़ेद पोश शादी का नाम सुन के उनका दिल धड़कने लगते हैं। किसी से बात हुई, बड़ी दुखी थी, मैंने कहा क्या हुआ, कह रही खानदान में बहुत सारी शादियाँ आ रही हैं। तो मैंने कहा ये तो खुशी की बात है, कहती खुशी की तो है लेकिन देना भी तो पड़ेगा ना, दोनों तरफ देना पड़ेगा क्योंकि रिश्तेदार हैं, एक तरफ अगर भाई है तो दूसरा बहन है, उसको भी देंगे उसको भी देंगे, ये दुरुस्त नहीं है। फला यार बुआ इन दल्ला, नहीं मिलेगा इसका अजर। हर बंदे का दिल खुला होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं ना कि कोई आपको दे, मिसाल है कि आपके घर में शादी है, अब आपकी बच्ची की शादी है या आपके बेटे की शादी है, दूसरे लोग आपको दे, एक मसला क्या होता है कि जो कोई गरीब रिश्तेदार बेचारा कुछ ले भी आए तो उसको नहीं 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 तुम नहीं, तुम अपने बच्चों के लिए रखो, ये और इज्जत नफ्स को मजरू करने वाली बात है, ऐसा कभी ना करें। बस मैंने देखा कि जब हम अपने गरीब रिश्तेदारों के घर में जाते हैं ना, अब वो बेचारे, एक तो मैंने देखा है कि पता नहीं क्यों जिनके पास कम होता है उनका दिल बहुत बड़ा होता है, खिलाना चाहते हैं कुछ, मुझे लगता है कि एक अंदर गिल्ट भी होता है ना कि हमारे घर ये खाते पीते लोग आ गए हैं तो इनकी हैसियत का खिलाएं। अब हुआ क्या कि वो अगर बोतल मंगा लें, क्या ज़रूरत ही मंगाने की, पैसे ज़ाया कर दिए खाना खिलाने की, ऐसा ना करें। क्या करें, बस आपका दिल है कि आप जाएंगे तो शहर में 5-6 घर वाले हैं ना, आप एक बहुत अमीर रिश्तेदार है, एक आपके मामू का घर है, खाला का, एक पुप्पी का, एक फलां का, अब आपका दिल जिस तरह भी चाहे लेकिन आपको लगता है कि पुप्पी को खुशी बहुत होती है आपको खिला के, तो आप उसको फ़ोन करें, अच्छा पुप्पू आज दोपहर का खाना आपके घर खाएंगे, और आप मिसाल है दाल चावल पका ले, कुछ भी कर ले, आप अपनी हैसियत से उनको कहें। फिर अगर मिसाल है कि आपके साथ आपके मियाँ हैं, आपकी सास हैं, वो इज्जत करते हुए अगर कुछ खाते हैं, क्या आपको नहीं पता चलता इस खाने पर कितना पैसा लगा होगा, मिसाल है 1,000 रुपये उन्होंने पाकिस्तान में लगा दिया, आप आते आते उनको 5,000 दे आइए नोट, ना दें तोहफे आप उनको पैसे दे दें, इज्जत पीरी वो भी खुश होंगे खिला के, और कहना पुप्पो क्या ज़रूरत थी, पुप्पो आपने इतने पैसे लगा दिए, अपने बच्चों की फीस दे लेती, इज्जत को बचाएं, यकीन करें इज्जत बड़ी कीमती चीज़ है। और बाज़ दफ़ा इसका अपोजिट भी होता है कि जहाँ बहुत अमीर रिश्तेदार होते हैं हमारे, हम उनके पास इस सोच के साथ जाते हैं कि हम जाएंगे तो देखना इन्होंने क्या कुछ हमारे लिए कर देना है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ इस बात को रखा है, और यहाँ ख़ास तौर पे अरबों के कल्चर में भी ये चीज़ मौजूद थी कि लोगों को दे के उसके बदले में कुछ ना कुछ उनसे लेना चाहते थे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम ऐसा बिल्कुल ना करो, ये दुरुस्त चीज़ नहीं है, ऐसी नीयत से तोहफा दिया लिया दुरुस्त नहीं। आगे भी हम पढ़ेंगे, 30वें पारे में आता है वला तमनुन तस्तकसिर, 29वें पारे में सूरह मुद्दसिर की आयत है वला तमनुन तस्तकसिर, मत दो इस सोच से कि ज़्यादा मिल जाए, कोई खुद ही दे दे तो और बात है लेकिन नीयत से नहीं होनी चाहिए। अब एक बात तो यह है लेकिन दूसरी इसकी तफसीर अगर आयत के अगले हिस्से को देखें जहाँ लफ्ज़ ज़कात आया है, तो हमने पीछे भी देखा जहाँ سود کی آیات آئیں کہ زکوٰۃ اور سود کا تذکرہ ساتھ ساتھ آتا ہے، تو یہ دوسری تفسیر جو آپ کہنے لگی ہوں یہ زیادہ حالات کے موافق لگتی ہے کہ یہ ہے قرآن پاک کی وہ آیت جو سود کی حرمت میں سب سے پہلے نازل ہوئی۔ قرآن کا مزاج ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کوئی بھی چیز جس میں لوگ بہت زیادہ شدت سے انوالو ہو چکے ہوں اس کو ایک دم ختم نہیں کرتا، ذہن سازی کی جاتی ہے، پہلے آہستہ آہستہ بتایا جاتا ہے یہ درست نہیں وہ نہیں ٹھیک، پھر آہستہ ذہن بنایا جاتا ہے۔ جیسے مثال ہے کہ شراب کا حکم جب نازل ہوا تھا تو آپ دیکھیے کہ عرب لوگ شراب کے بہت زیادہ عادی تھے، تو پہلے سورت نحل کی آیت 67 میں کہہ دیا کہ تم اس میں سے رزق حسن بھی بناتے اور ساتھ تم اس میں سے کچھ اور بھی بنا لیتے ہو، وہ شراب کی حرمت کے لیے پہلی آیت تھی۔ کچھ عرصہ گزرا، آیت 219 سورت بکرا میں آ گیا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، کہ شراب اور جوئے کے فائدے تھوڑے ہیں اور نقصان اس کا کم ہے، کیونکہ عرب لوگ جو تھے وہ شراب کی حالت میں صدقہ بہت کرتے تھے، تو یہ گمان کر دیتے تھے کہ بھئی ہم چونکہ شراب پی کے صدقہ ہی تو کرتے ہیں نا، تو کہا نہیں ٹھیک ہے صدقہ کرتے ہو اچھی بات ہے لیکن نقصانات اس کے بہت زیادہ ہیں۔ کچھ عرصہ اور گزر گیا، لوگوں نے کرنا شروع کیا، کچھ نے چھوڑ دی، نماز پڑھی شراب پی کے تو غلطیاں کرنے لگے۔ پھر سورت نساء کی آیت نمبر 43 نازل ہو گئی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نماز کے قریب نہ جاؤ تم نشے میں ہو، لہٰذا آخر میں پھر کہا کہ اب شراب اور جوا حرام ہے۔ بالکل یہی معاملہ جو تھا سود کے ساتھ بھی ہوا، سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلا یربو عند اللہ، دیکھیے یہاں اور شراب کی اس بات میں کہ اسمہما اکبر من نفعہما میں مماثلت ملتی ہے نا، کتنا پیارا انداز ہے، ہم لوگوں کو ایک دم موڑنا چاہتے ہیں، لوگ نہیں مڑیں گے، حکمت کے ساتھ سلو ڈاؤن کرتے ہوئے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ دیکھو اس سے فائدہ نہیں ہوگا، ہاں اگر بڑھانا چاہتے ہو تو ما آتے ہی تم ان زکات، جو زکوٰۃ دیتے ہو ترید و نوچ اللہ ہی، اللہ کا چہرہ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، تو انہی لوگوں کی باتیں بڑھیں گی۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سود کے بارے میں دوسری آیت سورت آل عمران کی 130 نازل ہوئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، غزوہ احد کے ضمن میں ایک آیت آئی تھی کہ لوگوں سود کو بڑھا چڑھا کر نہ دیا لیا کرو، کیونکہ وہاں غزوہ احد کی شکست کی وجہ جو بن رہی تھی وہ مال کی محبت بنی، تو وہاں ذرا لوہا نرم دے کر چوٹ لگا دی گئی، جب لوگ تھوڑے سے اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو گئے تو بالآخر پھر سورت بکرا کے اندر تو قطعی طور پر اس بات کو کہہ دیا گیا، بالکل آخری رکوع میں جہاں الذین یاکلون الربا لا یقومون کی آیتیں نازل ہو گئیں کہ قبروں سے یہ لوگ اس طرح اٹھیں گے جیسے خپتی ہوتے، تو بہرحال یہ آیت اس کے اندر موجود ہے، ہمارے لیے بھی اس میں بہت ہی خوبصورت بات ہے، اور یہاں پہ یہ موضوع ترتیب کے اعتبار سے آخری دفعہ آ رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں اگر انسان سود کے موضوع پہ بات کرے نا تو میرا خیال ہے کہ اس نے حق نہیں ادا کیا، اس وقت جو سب سے بڑا جال مسلمانوں کے ارد گرد پھنسایا گیا وہ سود کا ہی ہے، ابھی سورۃ عنکبوت کے آخر میں ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ کس طرح سود کی بات ہے، ہم باقی سب کو چھوڑ دیں، اس وقت اگر ہم قرآن کی اس منزل پہ پہنچ کر اپنے دلوں کے اندر اس بات کو راسخ کر لیں، پہلی بات ہے کہ اس کے بعد اب آپ کو کوئی نہیں کہے گا، اللہ کی کتاب اس کے بعد خاموش ہوگی، اشارے مل جائیں گے آگے جا کے لیکن براہ راست لفظ ربا نہیں آئے گا آپ کے آگے۔ بس آخری نصیحت ہے، جو سوچے جو کریں، جہاں تک آپ اپنی زندگی میں سے اس چیز کو نکال سکتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو، نہیں بڑھتا، نہیں ملے گا کچھ بھی آپ کو سود پہ لینے سے، کچھ فائدہ نہیں مل سکتا۔ آپ دیکھیے کہ ہم بڑی بڑی باتیں بہت کر چکے ہیں نا پیچھے اس کے بارے میں، کسی میں ہم نے ملکوں کے اوپر قرضوں کے اور سود کے جال پھنسے ہوئے دیکھے، کہیں سیاسی سود دیکھے، کہیں قومی دیکھے، بعض جگہ ہم اپنے شوہروں کا نام لے لیتے ہیں کہ جی شوہر ہمیں کہتے ہیں جی ہمیں ایسے گھر لینے، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ گھر کی اندر جو سامان ہوتا ہے نا اس کی مالک عورت ہوتی ہے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، کیسے بڑھے گا ہمارا مال، ہمارے مال میں برکت آ سکتی ہے اگر اس میں انٹرسٹ آ گیا شامل ہو گیا، ہمارے اکاؤنٹس بڑھیں گے اگر ہمارے اکاؤنٹس میں انٹرسٹ شامل ہوگا، ہمارا بزنس، ہماری جاب، कहाँ कहाँ ये पानी नहीं लगा हुआ, ये कहाँ नहीं भरता, ये फिर परेशानियों, दुखों और गमों की सूरत में हमारे दिल को पकड़ लेता है। ये है वो कुरान का हिस्सा जिसके ऊपर लोग कुरान की तरफ नहीं आना चाहते कि जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह के वादे हैं कि तुम दो अल्लाह के रास्ते में तुरीदु न बचल्ला ही फौलाई को मुलमुदीफुन। मैं सोचती हूँ ख्वाहिशात के नाम पे इंसान इतने बड़े बड़े कर्जे अपने ऊपर ले ले फिर भी चैन से रहे, और अल्लाह के रास्ते में देने के लिए इंसान हमेशा ये सोचे कि नहीं इससे तो जान ही निकल जाएगी। अल्लाह का वादा सच्चा है कि इंसानों के सच्चे हैं। ये भी नहीं कहा कि फौलाई को मुलमुफलेहून ये फला पाएंगे, मुदएफून लफ्ज़ तो आपको अब समझ आ रहा है ना, इसमें दुआ दिन फा क्या होता है, दुगना, अदआफन मुदाआफा दुगने का दुगना। आखिरी आयत सबक की, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युख़्जीकुम, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा फरमाया। बिल्कुल इसी टेक्स्ट में ये आयत मुझे लगता है कि हमारे दिल पे पड़ रही है, और बेहतरीन खूबसूरत अंदाज से अल्लाह ताला ने कहा, लोगो मैंने तुमको पैदा किया, सुम्मा रज़क़कुम फिर मैंने तुमको रिस्क दिया, क्या मैं नहीं दूंगा? कोई माँ अपने बच्चे को भूखा रखती है? माँ का दिल करता है कि बच्चा दूध मांगते मांगते मर जाए? तुम मयूमी तुकुम फिर मैं ही मौत दूंगा, जब वक्त आना है मर जाओगे, ना तुम भूख से मरोगे, ना गुर्बत से मरोगे, ना सर्दी से मरोगे, ना गर्मी से मरोगे, ना ज़रूरियात ज़िंदगी के ना पूरा होने से मरोगे, जब अल्लाह मारना चाहेगा तभी मरोगे। लेकिन ये एक बात याद रखो, सुम्मा युहयीकुम फिर उठाना ज़रूर है, और कैसे उठाएगा, पिछली आयत के तनाजर से अगर आप देख लें तो उस आयत को साथ मिला लें कि अल्लज़ीना याकुलूना रिबा, जो लोग सूद खाते हैं, ला यकूमूना नहीं खड़े होंगे, इल्ला कमा यकूमुल्लज़ी मगर जैसे कि खड़ा होता है वो शख्स, यतखब्बतुहुश शैतानु मिनल मस, खबती बना दिया, दीवाना बना दिया, पागल बना दिया जिसको शैतान ने छूकर। और ख्वाहिशों का डसा हुआ बंदा भी सांप के डसे हुए से कुछ कम खतरनाक नहीं होता, स्टिल फिर भी इंसान इंजॉय करे। आप कहते हैं कोई बात नहीं मजबूर है, जब मजबूर है तो हमारी शक्लें रोती भी क्यों नहीं दिखती मर्दों को, हम क्यों दुखी नहीं दिखते, हमें कैसे चैन आता है, हम कैसे फिर खिदमत कर लेते हैं, हम कैसे बातें करते हैं। हल मिन शुरका इकुम मई यफलु मिन ज़ालिकुम मिन शयिन, क्या तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में से कोई है जो कर सकता हो इन कामों में से कुछ भी, किन कामों में से जो तुमको पैदा करे, है कोई जो तुमको रिस्क दे, जो तुम्हें मारे और जो तुम्हें दोबारा जिंदगी दे, कोई भी नहीं है। तो मान जाओ सुबहानहू, पाक है वो इससे, वताला और बुलंद है, बरतर है, अम्मा युश्रिकून उससे जो वो शिर्क ठहराते हैं। आप इस सबक में अगर आप गौर से देखें ना, तो कहीं तुम कहा गया, कहीं वो कहा गया। अगर पीछे वाली बात को देखें ना, मिन शुरकाई कोम युमीत को, सब हाजिर मुतकल्लिम के सीगे हैं, तुम खलककुम रज़ककुम युमीतुकुम युख्जीकुम शुरकाइकुम, और आखिर में क्या आना चाहिए था, वताला अम्मा तुश्रिकुन, क्या आ रहा है, युश्रिकुन। मुंह भी नहीं लगाता अल्लाह से लोगों को कि जाओ फिर, मैं नहीं कलाम करता तुमसे, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें मैं मुखातिब भी करूं। किसी को एड्रेस करना बहुत बड़ी बात होती है, एक ऑनर है। आज वजीरे मुमलिकत कौम से खिताब फरमाएंगे, आज बॉस जो है वो मीटिंग करेंगे सबसे, बहुत बड़ी ऑनर होती है किसी को खिताब करना, किसी को बुलाना किसी ऐसी बात के लिए। अल्लाह करे नहीं, व तआला मायूसी, जो वो कर रहे हैं करने दो, यानी थे वो बड़े अहम लेकिन ये गलत काम करके वो अल्लाह ताला की निगाहों से गिर गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हक बात को लेने वाला और मानने वाला बना दे। यहाँ पे सबक पूरा हुआ। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।